और फिर आगे देखिए मूसा अलैहिस्सलाम को देखें, अपनी बात को फिर से वहीं से शुरू कर दे। पहले बात का जवाब दिया ना, मेरा रब वो है जिसने शक्लो सूरत दी हर चीज को, फिर अनुवाई की। अब इसने बीच में ये शोशा छोड़ा, उसकी बात का मुख्तसरन टू द पॉइंट जवाब दे के लंबी चौड़ी नहीं बातें की उस बारे में। नहीं तुम्हें क्या पता उन्होंने क्या काम किए हैं, फिर तुम्हें क्या पता उन लोगों का क्या हुआ है, हमें क्या जरूरत है उनकी डिस्कस कर। ऐसी कोई बात नहीं की, वल्लाहु आलम हमें भी क्या कहना चाहिए इसमें, वल्लाहु अल्लाह बेहतर जानता। फिर आगे फौरन अपनी वो जो पिछली बात थी उसको शुरू कर दिया। देखिए कितने आप लोग जब पूछते हैं ना दावा कैसे करें, तो ये सब आपको चीजें इसी से, तो पैगम्बरों का जो तरीका था वो सारा तरीका उससे आप क्या सीखते हैं, दावा ही तो सीखते हैं। फिर ये क्वेश्चन करते हैं दावा कैसे करें, यही तो सिंपल सिंपल बातें हैं, सिंपल चीजों को लोगों को बताएं, कोई बहुत टेक्निकल और ऐसी चीजों में नहीं जाने की जरूरत, सिंपल बातें। फिर तुम आओगे फिर तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, देखो तुम आओगे तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर तुम बाल छुपाने पड़ेंगे, फिर तुम ऐसे, वो नहीं जाए उसमें। रब का सीधा सीधा तारुफ कराया करें जब किसी को बात करनी हो तो। वो है अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ध महदा, जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को बिछौना बनाया, इस जमीन को बिछाया तुम्हारे लिए। जैसे जमीन ऐसे ही है जैसे माँ की गोद होती है ना, माँ की गोद में बच्चे के लिए गिजा भी होती है, माँ की गोद में मोहब्बत भी होती है, माँ की गोद में सिक्योरिटी भी होती है, इसी तरह इंसान के लिए जमीन है, जमीन से उसके लिए रिस्क भी निकलता है, जमीन में वो प्रोटेक्टेड भी है, वरना किसी और सियारे सितारे पे जाके नहीं जिंदगी गुजार सकता था। जमीन के अंदर चलना फिरना उसके लिए सेफ भी है। तो देखो अल्लाह ने इस जमीन को तुम्हारे लिए बिछा दिया, वो रब वो है। और देखिए इंसान कैसा है, इसी जमीन पे रहता है, इसी जमीन से खाता पीता है, इसी जमीन में अपना काम कारोबार करता है, इसी जमीन में अपनी जिंदगी गुजारता है, फायदे उठाता है इससे। और जिसने इस जमीन को बिछाया है, जिसने इस जमीन को उसके लिए पैदा किया है, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, उसका शुक्र नहीं अदा करता, उसका कहना नहीं मानना चाहता, उसी की बनाई हुई जमीन पे रहते हुए, और रहता भी है उसी से फायदे भी उठाता है, फिर भी उसी की नहीं मानता जिसने उसको ये घर दिया। जमीन इंसान के लिए घर ही तो है, इसके अलावा कायनात में और कोई जगह नहीं है जिसको वो अपना घर बना ले। अल्लाह इस जमीन को उसके लिए बिछोना ना बनाता तो इंसान किसी चांद पे या सितारे पे जाके रॉकेट में बैठ जाते, किसी में जाके कोई जिंदगी नहीं गुजार सकते थे। तो अल्लाह ताला वो जात है जिसने तुम्हें रहने की जगह दी, किसी के ऊपर आप एहसान करते हैं तो यही बात है ना, हमने तो तुम्हें रहने के लिए अपना घर दिया था, ऐसे ही एहसान करते हैं ना किसी के ऊपर, चंद दिन के लिए किसी को ठहरा लिया होता तो फिर हम ये बात कहते हैं। वो रब तो वो है जब से पैदा हुए हो यहीं पे हो, तुम्हारे अबाओ अजदाद भी इसी पे रहे, तुम्हारी अगली नस्लों ने भी इसी पे रहना, जिसने तुम्हें घर दिया है। बस अला कला कुम्फी हसुबुला, और इसी में तुम्हारे लिए रास्ते बना लिए, मूवमेंट के लिए, तुम्हारे इधर उधर जाने के लिए, सफर करने के लिए रास्ते बनाए, लैंडमार्क्स रखे। वरना तो अगर अल्लाह ताला ये ना रखता तो जो आगे जाने वाले हैं वो मंजिलों को ना पहुंचते, जो वापस मुड़ने वाले हैं उनकी वापसी मुमकिन ही ना होती, कोई निशानी ही ना होती, कोई रास्ता ही ना होता, ना कोई आगे जा सकता था ना कोई वापस पलट सकता था। वअंजला मिनस समाई माअ, और जिंदगी के लिए पानी की जरूरत है, पानी के बगैर लाइफ मुमकिन नहीं है। नाजिल किया उसने आसमान से पानी, पानी भी तुम्हारे लिए नाजिल किया। फअखरजना बिही अज़वाजम मिन नबातिन शत्ता, और इसी पानी से फिर निकाली है कई किस्में पौधों की, तरह तरह के पौधे निकाले। तुम खुद तो जाओ जरा पानी देने के लिए जाओ, अपने बैकयार्ड में भी पानी देना मुश्किल हो जाता है, और कहां ये कि सारी जमीन पे अल्लाह ताला ने इंतजाम फरमाया, आसमान से वो पानी बरसाता है, और तरह तरह की किस्में पौधों की किसके लिए उगाई हुई है ये, ताकि इससे कुलू खाओ, वरआउ अनआमकुम, और चराओ अपने मवेशियों को भी, तुम्हारे लिए खाने के लिए बनाई है, देखे रहने के लिए तुम्हें दिया, खाने के लिए तुम्हें दिया, पीने के लिए तुम्हें दिया, रास्ते तुम्हारे लिए बनाए, तुम्हारे मवेशियों का भी इंतजाम किया क्योंकि वो उनके ऊपर आप सवारी करते हो और उनसे ही आप खाते हो, उन्हीं को जिबा करके खाते हो ना, उनका ही फूड नहीं होगा ना वो रहेंगे तो आप खाओगे किसको। अल्लाह ताला ने अगर आप देखें ना तो लाइफ साइकिल को अगर आप देखें तो उसके अंदर अगर अल्लाह ताला ये नबातात प्लांट्स ना उगाए, पानी ना बरसाए, प्लांट्स नहीं उगेंगे, प्लांट्स नहीं उगेंगे तो जो प्लांट्स को खाने वाले हैं वो जानवर नहीं रहेंगे, वो जानवर नहीं रहेंगे तो हम किसको खाएंगे, प्लांट तो है नहीं कि हम सब्जी खा लें, और वो जानवर भी नहीं जिनका गोश्त खाते थे, तो इंसान भी नहीं रह सकते। तो ये एक लाइफ साइकिल है, चेन है जिसको कहते हैं, फूड चेन। और इस चेन के अंदर इंसान मोहताज है। अल्लाह ताला एक इसकी कड़ी को निकाल देना तो इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तुम्हारे खाने के लिए है ये, तुम्हारे खाने का भी इंतजाम किया, पीने का भी इंतजाम किया, रहने का भी इंतजाम किया, और क्या चाहते हो तुम? फिर भी रब को नहीं पहचानोगे? कभी नहीं जहन में ये आता कि किसने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया हुआ, किसने इस जमीन को मेरे लिए बना दिया, और मुआफ़िक इसका टेम्परेचर और इसकी साख और इसकी जो ग्रेविटी है, इस मुआफिक बनाई कि मैं चल फिर भी सकता हूं, मैं यहाँ पे सरवाइव कर सकता हूँ। ये इंसान कभी नहीं सोचता। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिल उलिन नहा नुहा, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए, अगर अकल इस्तेमाल करो ना तो तुम्हें पता चल जाए इसमें कितने रब को पहचानने की निशानी है। निशानी किस चीज की होती है? आपको कोई अंगूठी देकर कहता है ये मेरी निशानी है, निशानी से क्या होता है ये तो बताए ना। अभी मैं आपको आयात आयात कहती जाऊं और आपको समझ ना आए, बस ऐसे ही पढ़ते जाए निशानियां निशानियां। हर चीज का ना थोड़ा सा ज्यादा इस तरह से गौर किया करें, निशानी क्या चीज होती है? ये मेरी अम्मी की निशानी है, यानी क्या मतलब कि उसको देखकर आपको वो याद आ जाता है जिसकी वो चीज होती है, राइट? अब जमीन को देखा, रब याद आया, खाना खाया, रब याद आया, बारिश बरस रही है, रब याद आया, जमीन से पौधे उग रहे हैं, रब याद आया, आप खुद खाना खा रहे हैं, आपकी जानवर भी खाना खा रहे हैं, रब याद आया। ये तो निशानियां थी। अगर निशानियां भी अकल वालों के लिए होती है ना, बेअकलों के लिए नहीं। बेअकल तो जो है ना वो जानवरों की सतह पे जिंदगी गुजारते हैं, कैसे खाया पिया सोए बस जिंदगी गुजारी और चले गए। अकलमंद तो हम अपने आप को बहुत समझते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जीनियस है, और पता नहीं हमने कितनी डिग्रियां ले ली। अगर अकल वाला वो नहीं है जो स्कूलों कॉलेजों में पढ़ के डिग्रियां ले ले, अकल वाला वो है जो अपने रब को पहचाने, और जिसने सब कुछ दिया जो उसको ही ना पहचाना, उसको क्या अकल है? जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको खिलाया पिलाया पहनाया सुलाया, नींद भी तो वो ही देता है। उस वो ना दे तो नींद नहीं आती। लोगों का कईयों का प्रॉब्लम ही है कि उनको नींद नहीं आती। जो हंसाता है जो रुलाता है ये भी आगे आएगा सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ही है जो हंसाता है और वो ही है रुलाता है। तो जो हंसाता है रुलाता है, जो तुम्हारे सांस तुम्हें जो आराम से आ रही है जो वो देता है, तुम्हारा आंख का झपकना उसके इज्जत से, हमारे बॉडी का सिस्टम। अब ये देखिए, हाँ ये जो यहाँ पे खलक हूँ सुमा हदा में, एक और बात नोट करें, ये जो आपके जिस्म के अंदर आजाद चल रहे हैं, इनको जानने के लिए, अपने अपनी मेरी बॉडी में ही चल रहे हैं, इनको जानने के लिए हम इतना पढ़ते हैं, मेडिकल की कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, फिर भी जाके पूरी बॉडी को समझ नहीं पाते सही तरह से, इसके फंक्शंस को सही से समझ नहीं पाते, फिर भी इसके रिएक्शंस को समझ नहीं पाते। इसी बॉडी को काम करने की हिदायत किसने दिया? दिल को धड़कना किसने सिखाया? मेदे को ये डाइजेस्ट करना किसने सिखाया? ये इस आंख को देखना किसने सिखाया? कान को सुनना किसने सिखाया? ये सब हिदायत में ही बातें आती हैं। आयत नंबर जो 50 आपको बताई थी ना, उसी के अंदर आप लिखिएगा ये। तो ये सब चीजें अगर गौर और फिक्र करो, अकल तो इस्तेमाल करो, ऐ अकल वालों कुछ अकल तो करो। अल्लाह ने अकल तो तुम्हें इसीलिए दी थी। तुम तो ये सोचते, चलो जानवरों के पास तो इतनी अकल समझ नहीं है, तुम तो अकलमंद खुद को कहते हो, जरा सोचो तो सही, वो रब कौन है फिर? कभी नहीं उसकी याद आती तुम्हें, कभी नहीं उसके एहसानात तले दबे जाते तुम, कभी तो उसके आगे सर उठाने से पहले सोचो ये, जिसका खाता हूं उसी के आगे सर उठा रही हूं, जिसकी जमीन पे चलती हूं उसी की नाफरमानी कर रही हूं, जिसका दिया पहनती हूं उसी के आगे नहीं झुकती, जिसका वो तो नौकर भी कहता है, जो कोई मतलब ऐसे कोई वफादार लोग होते हैं वो कहते हैं जिनके घर का नमक खाया है तो हम नमक हरामी नहीं कर सकते, और जो हम दिन रात नमक हरामियां कर रहे हैं अपने रब की, नमक क्या हमारी तो जिस्म का रुआ रुआ उसके एहसानात तले दबा हुआ है। किस किस चीज का नाम ले, हर चीज ही उसकी दी हुई है, हर चीज। और फिर उसी के लिए कभी ये अकल नहीं इस्तेमाल हुई, अकल दी भी उसकी है, कभी नहीं उसकी निशानियों में पे गौर फिकर किया। वो कौन, किसके पास इतना टाइम है, बस दी भी है तो दी भी है। हम इसी काबिल थे ना, हम जो इतने अच्छे हैं कि हमें सब कुछ मिला हुआ है, हम खुद ही इतने अच्छे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह, तो इसमें इबरतें हैं। वो लोग जो डर जाए, जिनके अंदर, जिनको अल्लाह ने अकल दी है ना, अगर वो इस अकल का इस्तेमाल करें तो रब को पा लेंगे। मिन्हा खलकनाकुम, इसी में से हमने तुमको पैदा किया। किस में से? इस जमीन में से। हा की जमीन किस तरफ जा रही है? इस जमीन की तरफ, जहां पे जमीन की जिक्र आया था ना पहले, तो इसी में से हमने तुम्हें पैदा किया है। वफीहा नुईदुकुम, और इसी में हम तुमको लौटाएंगे। कब लौटाएंगे? जब इंसान मर जाता है तो इसी में लौटता है। वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी में से हम तुमको निकालेंगे दूसरी दफा। देखो, ये जमीन तुम्हारे लिए बिछौना बन ही नहीं गई जिंदगी गुजारने के लिए, बल्कि तुम पैदा भी इसी में से हुए। पैदा किस तरह? हम तो कहते हैं हम नुतफे से पैदा हुए, तो नुतफा कहाँ से पैदा हुआ? नुतफा और जो माँ का खून है उससे पैदा हुआ इंसान, तो वो कैसे पैदा हुआ है? नुतफा भी इसी से पैदा हुआ ना, इस जमीन से जो खाया पिया उसी से वो पैदा हुआ है। इसी तरह औरत ने जो खाया पिया उसी से खून पैदा हुआ, तो बेसिकली अगर पीछे जाए तो मट्टी से ही पैदा हुए ना। तो अल्लाह ताला ने इसमें से तुमको पैदा किया, फिर ये तुम्हें जिंदगी गुजारने के लिए ही नहीं, बल्कि उसके बाद जब मर जाते हो तब भी इसी की गोद तुम्हें, तुम्हारे लिए एक पनाहगाह का काम देती है, तुम्हें अपने अंदर समेट लेती है। जैसे माँ की गोद होती है, इसी तरह तुम्हें इसके अंदर डाल दिया जाता है, बिल्कुल गोद की तरह ही है ना कब्र। और इसी में से तुम्हें निकाला जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैयत के दफन करने के बाद इसकी कब्र पर मट्टी डालते हुए पहली दफा फरमाया मिनहा खलकनाकुम, फिर दूसरी दफा मट्टी की दूसरी लप डालते हुए फरमाया वफीहा नुईदुकुम, फिर मट्टी की तीसरी लप डाली तो फरमाया व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी में से तुम्हें दूसरी दफा फिर खड़ा अल्लाह इसी से निकालेगा तुम्हें। लोग इसी से उगेंगे, इसी से निकलेंगे। जिंदों का भी घर यही है, मुर्दों का भी यही है। तुम ऐसे रब की शुक्रगुजारी नहीं करते, फिर ऐसे रब को पहचानते ही नहीं हो। वलकद अरैनाहु आयातिना कुल्लहा फकज्जब व अबा, और अलबत्ता दिखाई हमने इसको अपनी निशानियां सारी की सारी। किसको अब बात हो रही है? फिरौन को। सारी बातें बता भी दी, निशानियां भी दिखा दी, मौजे दिखा दिए उसने, बजाय बात मानने के कज़ाबा उसने झुटलाया व अबा और इनकार किया। अब ये इंसान की रहाइश की जगह भी अल्लाह ताला ने बता दी, उसकी समेटने की जगह भी बता दी, और कैसे वो परवान चढ़ता है कहाँ और फिर कहाँ से निकलेगा ये भी बता दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आराफ में, इसी में तुम जियोगे, इसी में तुम मरोगे और इसी में से तुम निकाले जाओगे। तो अल्लाह ताला ने तो एहसास दिला दिया कि मुख्तसिर सी जिंदगी जो तुमको मिली है ना, ये बेमकसद नहीं है। और जिसको तुम इतना लंबा समझते हो ना, कल को ये हकीकत तुम्हारे सामने खुल जाएगी कि ये जिंदगी एक घड़ी के सिवा कुछ भी नहीं थी। ऐसे ही महसूस होगा कि एक घड़ी की जिंदगी इंसान गुजार के आया। तो इस मिट्टी से पैदा हुआ है ना, फिर असल हालत में मिट्टी ही बन जाओगे, फिर इसी में घुल जाओगे तुम, फिर इसी में से तुम्हें उठाया जाएगा। ये सारा कुछ बता दिया फिरौन को, और ये बातें समझने के लिए काफी थी, मगर जो सरकश हो चुका था ना, मुतकब्बिर, वो फिर इस बात को नहीं समझता। अब यहां पे मट्टी की बात, जमीन की बात, ये क्यों फिरौन के सामने की? इसलिए कि उसका गरूर टूटे कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तो खुद मट्टी हो, इसी से पैदा हुए, उसी में तुम्हें जाना है, इसी में से तुम उठाए जाओगे, तुम तो खुद मट्टी हो, क्या चीज हो तुम? फिर तुम्हें तकबर कहाँ जेब देता है? तुम अपनी बड़ाई की बातें कैसे कर सकते हो? मुझे बताएं, फिरौन भी नहीं कर सकता, कोई और कर सकता है? या फिरौन जैसा इतना बड़ा बादशाह नहीं कर सकता बड़ाई की बात? हम में से कोई करने के काबिल है? जो वैसे ही कुछ नहीं है ना, कोई हम में से कोई बादशाह है ना कोई वजीर। तो आज से पहले हमारा वजूद क्या था? मट्टी था। और कल को क्या होगा? फिर से मट्टी हो जाएगा, और फिर उठाया भी इसी में से जाएगा। इंसान तो चाहता है ना कि मैं बड़ी चीज बन जाऊं, हालांकि वो जितना मर्जी ऊपर चला जाए, वो है क्या असल में, उसकी असलियत क्या है, उसके लिए तो जवाल ही जवाल है ना। इंसान की औकात पता चलती है जब आप किसी डेड बॉडी को नहलाते हैं ना, कितना बेबस है वो। वाकई अल्लाह ताला के सामने भी हम इसी डेड बॉडी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जैसे वो डेड बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी उसके साथ करें, हम भी अल्लाह के सामने इसी तरह है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। और फिरौन ने कह दिया था मैं तो नंबर वन हूं, और आज उस नंबर वन का हाल देखें जरा, जो अपने आप को नंबर वन कहता था, म्यूजियम्स में रखा हुआ इबरत के लिए। हाँ आज देखें जो दुनिया में जितनी भाग दौड़ है, जितनी भाग दौड़ है, वो इसीलिए है ना, मैं नंबर वन बन जाऊं, मैं सबसे आगे बन जाऊं, मेरी बड़ाइयां हो जाएं। होना तो ये चाहिए था कि कौन है जो अपने रब के सामने ज्यादा से ज्यादा सर झुकाता है, लेकिन इंसान ने उलट किया। हालांकि बड़े बड़ों का अंजाम देखा हमने कि उन्होंने झुकाया नहीं सर, तो आज क्या है, फिर भी हमें समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, अरे ना वो आयाती ना, अपना काम तो अल्लाह ने बता दिया, हमने तो उसको निशानियां दिखा दी, अब उसने क्या काम किया, उसका काम देखें, कज़्ज़बा वाबा, उसने झुटलाया भी और इनकार भी किया, एक काम रब का है, दूसरा काम फिरौन का है। रब ने तो हुज्जत तमाम कर दी ना निशानियां दिखा के। काला कहा अजئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى, क्या तू इसलिए आया कि तू हमें हमारी जमीन से निकाल दे अपने जादू के साथ। जादू किस चीज को कहा था, ये जो असा दिखाया था और यदे बैजा, ये जादू इसको कहा, तो इसलिए आया कि हमें ये जादू के जरिए यहां से निकाले ए मूसा, ताकि तू खुद बादशाह बन जा और हमें यहां से निकाल दे, इसलिए तू आया, ये उसने क्यों कहा। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने जो कहा ना बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दो, इस चीज से वो डर गया कि अगर ये लोग चले गए, क्योंकि कहा जाता है कि बनी इसराइल जो थे ना वो काफी तादाद में थे, तकरीबन कहीं 6 लाख आता है, कहीं 20 लाख आता है, तो इतनी बड़ी तादाद की वजह से उसको ये खतरा लाहक हुआ कि अगर ये साथ चले गए तो फिर तो ये कहीं ताकतवर होके आके मेरी हुकूमत पे ही ना कब्जा कर ले। और इससे पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि फिरौन कितना खौफजदा था, उसको खुद भी नहीं यकीन है कि मैं बड़ा रब हूं, वरना कोई जो रब हो वो कहेगा ये कि तुम तो मुझे यहां से निकालने के लिए आए, इसका मतलब उसको खुद भी ये यकीन नहीं है, वो खुद भी अंदर से खौफजदा है। और कौन किसी को आज तक जादू के जोर से कहीं से निकाल सका है। फलनातियन्नक बिसिहरिन मिस्लिही, बस अलबत्ता हम भी जरूर लाएंगे जादू के साथ इस जैसे, यानी जैसा तुम जादू लाए हो इस तरह का हम भी लेकर आएंगे। फजाल बैना ना व बैना का मौईदन, और उसने कहा एक दिन रख लो हमारे और तुम्हारे दरमियान जो वादे का दिन हो, ला नुखलिफुहु, नहीं हम खिलाफ करेंगे इससे, ना नू वला अंता, ना हम खिलाफ करें ना तुम करना, मकान अनसुवा, एक जगह कोई हमवार जगह हो, कोई सीधी जगह हो, तो वहां पे एक वादे का दिन रख लेते हैं, एक यानी इसका जैसे आप जिसको कहें कॉन्टेस्ट का दिन रख लेते हैं, जिस दिन के हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे, हम भी लेकर आएंगे जादू, और फिर ना तुम उस दिन का तुम खिलाफ करोगे ना हम, उस दिन हम दोनों वहां पे पहुंचेंगे और एक जगह का तुम मुकर्रर कर लो। अब देखें कह रहा है कि हम भी तुम्हारा मुकाबला करेंगे, और इतनी ऑब्जेक्शंस मूसा अलैहिस्सलाम पे की, और उसके बाद अब देखिए कह रहा वादे का दिन तुम मुकरर कर लो, ये अल्लाह की तरफ से ही था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया कि एक एक दिन मुकरर कर लो। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखें जो हक पे होता है ना उसको डर नहीं होता, और उसके साथ अल्लाह की मदद होती है, जो बातिल पे होता है उसके साथ मादी कुवत वो अपने साथ लेकर आता है, लेकिन वो ये समझता है मादी कुवत से मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अल्लाह के मुकाबले में भला कोई कुवत ठहर सकती है। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या इंतखाब किया, काला मौईदुकुम यौमुज़्ज़ीना, वादे का वक्त अगर मुकर्रर करना है तो जश्न का दिन, कहा जाता है ये उनकी ईद का दिन था या फिर उनका सालाना मेला हुआ करता था वो दिन था, और उस दिन का फिक्स किया गया, वह आई युहशर नासु दोहा, और ये कि इकट्ठे किए जाएंगे लोग दोहा के वक्त, यानी चाश्त के वक्त, यानी दिन चढ़े, ईद के दिन दिन चढ़े लोग जमा किए जाएं एक हमवार जगह पे, एक मैदान में, एक ऐसी जगह जहां पे सब अच्छी तरह देख सके। तो जैसे समझ लें आपकी बहुत खुली जगह हो, आप एक स्टेडियम का अपने जहन के अंदर लेकर आए, बहुत बड़ा स्टेडियम। आप ये गेम्स वगैरह होती हैं तो आपको टीवी पे देखा ही होगा आपने कि कितने बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं। तो इस तरह एक खुली बड़ी जगह जहाँ पे सारे लोग जमा हो जाए और दिन चढ़े का वक्त हो ताकि सबको अच्छी तरह नजर आए, और उस दिन पर इत्तेफाक हो गया कि ठीक है उस दिन लोग भी ज्यादा आएंगे क्योंकि जश्न का दिन है, और लोग ये वैसे भी लोगों को इन चीजों में जरा दिलचस्पी ज्यादा होती है जहां पे कोई मुकाबला हो रहा हो। फतह वल्ला, फिर उन्हें मान लिया, फिर फतह वल्ला, फिर पलटा, फिर आउनू फिर आउन, फजमा कईदा हो, फिर उसने इकट्ठी की अपनी चालें, सुम आता फिर आ गया। इस आयत में फिरौन की आपको भाग दौड़ नजर आती है, मुख्तसर सी आयत है लेकिन देखें उसकी तड़प नजर आ रही है ना कि उसको करार नहीं है। अल्लाह ताला ने कैसे वाजे कर दिया, देखो फिरौन गया जाके सारी तदबीरें की, फिर पलटा, चैन से नहीं बैठा वो, मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने के लिए वो उसने तदबीरें इकट्ठी की, चालें इकट्ठी की, सुम आता फिर आ गया, फिर आ गया। अब कहाँ आए, वो उस जगह जहां पे वो वादे का दिन था और वादे की जगह थी, और तदबीरें उसने क्या की थी, ये कि सारे शहर में ऐलान कर दिया कि जादूगरों को जगह जगह से इकट्ठा किया जाए, जो भी पाए के जादूगर हैं बहुत ज्यादा, यानी जिसको कहेंगे कि माहिर जादूगर है, उनसे उनको बुलाया और तय कर लिया कि जो है ऐसा बड़ा जादू लेकर आना है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के इस जिसको वो उन्होंने मौजे वो करतब समझा कि इस करतब का मुकाबला कर सके। कालहु मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अल्लाही कज़िबा। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम ने किससे कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन जादूगरों से कि अफसोस है तुम पे ना, तुम घड़ो अल्लाह पे झूठ। अल्लाह पे झूठ घड़ना क्या था, अल्लाह पे झूठ करना ये था कि एक तो इस मौजे को जादू कहना, तो ये वो कह रहे हैं ये मुझे नहीं तुम झूठ कह रहे, या नबी को मूसा अलैहि सलाम को जादूगर कहना, तो ये तुम मेरा नहीं कुछ कह रहे, मुझे नहीं झूठ कह रहे, बल्कि ये अल्लाह के ऊपर तुम झूठ बांध रहे हो। तो अफसोस है तुम पे कि तुम अल्लाह के ऊपर झूठ बांधते हो, मत गढ़ो इस पे झूठ। फयुसहितकुम बिआज़ाब, अगर तुमने ऐसा किया तो वो तुमको अजाब के साथ फना कर देगा। ये जादू नहीं है, ये मौजा है उसकी तरफ से। वकद खाबा मन इफ्तरा, और तहकीक ना मुराद हुआ जिसने घड़ लिया। जिसने भी अल्लाह पे झूठ घड़ा है ना वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। अब जब मूसा अलैहि सलाम ने मुकाबले से थोड़ी देर पहले ये खिताब किया और बड़ा समझाया इन लोगों को, बहुत बड़ी बात की कि हक के मुकाबले में जादू ना बनाओ, ये बहुत खतरनाक बात है। अब क्या हुआ, इसका असर जादूगरों पे हुआ। फतनाजाउ अमरहुम बैनहुम व असरु नजवा, वो झगड़ने लगे आपस में अपने मामले में। क्या झगड़ा हुआ था उनके अंदर, कहा जाता है कि उनमें इख्तलाफ पैदा हो गया, फूट पड़ गई। कुछ इनमें कहने लगे ये जादूगर नहीं है, ये तो वाकई शायद अल्लाह का नबी ही है। दूसरों ने कहा नहीं नहीं हमारे जैसा ही जादूगर है। और फिर ये भी आता है कुछ ने कहा, जिन्होंने कहा था कि ये अल्लाह का नबी है, तो उन्होंने कहा छोड़ो हम इसका मुकाबला नहीं करते, क्योंकि इसका मुकाबला करेंगे तो हम थोड़ी जीत सकते। तो बाकियों ने उनको समझाया कि नहीं, अब चुपके चुपके आपस में बात कर रहे हैं। तो बाकी उनको समझाने लगे, कालू इन हादानी लसाहिरानी, ये दोनों अलबत्ता जादूगर हैं। अब बातें करने वालों में से हो सकता है इन्हीं जादूगरों में से किसी ने कहा कि ये बात है, और ये वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने फिरौन से यही सुना है। युरीदानी अन युखरिजाकुम मिन अर्दिकुम, ये तो ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी जमीन से ही निकलवा दें, तुम्हें यहां से निकाल दें, इसलिए ये आए हैं। अब ये भी बातें किसकी तरफ से आई थी, फिरौन की तरफ से, उनके जहनों में डाली गई थी ना। वयलहबा भी तरीकतिकुम, और दोनों ले जाएं तुम्हारे तरीके को। तरीका तुम्हारा क्या, कौन सा तरीका था इनका, जिसको कहा गया अलमुसला, मिसाली तरीका। देखो तुम्हारा तरीका मिसाली तरीका क्या मतलब, तुम्हारा जो वे ऑफ लाइफ है, जो तुम्हारा लाइफ स्टाइल है, जो तुम्हारा रास्ता है, जो तुम्हारा मजहब है, जो तुम्हारा कौमी निजाम है, जो इनका था, ये अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते थे ना ये जो तुम्हारा मिसाली लाइफस्टाइल है, जिसको आप कहेंगे तो तुम्हारा सिस्टम है, सिस्टम को खतरा है। अब किसी को कहते हैं सिस्टम को खतरा है, तो वो तो वैसे ही उसके ऊपर आ जाते हैं, यानी अपनी उनके अंदर जाग जाती है अपनी कौम की, अपनी मिसाली तरह जिंदगी की, अपने सोशल निजाम को बचाने की एक जंग है। तो तुम जो है ना इसका मुकाबला करो, ये तो चाहता है कि तुम्हारे सिस्टम को ही बदल दे। अब देखें बातें क्या उन्होंने की थी और इन्होंने क्या बना ली। फअजमिउ कैदकुम, फिर इकट्ठी कर लो, जमा कर लो अपनी तदबीरें। अब ये कौन कह रहा है? अब हो सकता है कि ये फिरौन ने कहा हो, और हो सकता है इन्हीं में से किसी ने कहा हो कि अपनी तकबीरें इकट्ठी कर लो, बस अब फूट की कोई बात नहीं, अब इख्तलाफ को खत्म करो। सुम तू सफन, फिर आ जाओ सफ बना के। अब देखिए फिरौन वैसे तो मतलब बात जो रब की बात थी, देखिए तकबर की वजह से वो समझ नहीं आई उसको बात, लेकिन वैसे बड़ी उसके अंदर अक्ल थी। उसने कहा ये जो, क्योंकि पता है कि जब फूट पड़ जाए तो फिर तो आप मुकाबला नहीं कर सकते, जब अपने अंदर ही फूट हो। तो तुम एग्री करो एक बात पे, इख्तलाफ को अब खत्म करो, बस ये तो तुम्हारा सिस्टम खराब करने के लिए आया है, ये तो तुम्हें निकलवा के छोड़ेगा यहाँ से, तुम किसकी बातों में आ गए। चलो आओ अब ये सारी बातें खत्म करो, बस एक चीज पे जम जाओ अब, और देखो जब तुम स्टेडियम के अंदर आना साफ बना के आना। वक़द अफलह अल्यौम मन इस्तअला, और याद रखो कि आज जो कामयाब हो गया वो फला पा गया, यानी जो जीत गया, जो कामयाब हो गया, तो फिर उसके लिए तो बहुत बड़ा अजर है ना, फिर वो तो यानी उसको बहुत इनाम इकराम का वादा किया था ना इसने, और इन लोगों ने भी उससे, जादूगरम ने भी उससे यही मांगा था। तो जो आज जीत गया बस वो ही कामयाब है। तो अब ये, अब आप सोचें ये आप के, वो देखते हैं ना हम के स्टेडियम में आने से पहले बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सी बातें हो रही होती हैं। अब लोगों के सामने आने से पहले ये सारी बातें हो रही हैं अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी उनको ये कह दिया। अब देखिए सारे जमा हो गए, जश्न का दिन था, सुबह का वक्त था, और सब दुनिया जमा हुई है, बहुत ग्रैंड मुकाबला था ये, बहुत बड़ी जगह थी। क्योंकि ये कहा जाता है कई जगह पे ये आया है कि ये तकरीबन ये जादूगर जो थे ना 15,000 के करीब थे। अब आप सोचें 15,000 लोगों को खड़े होने की कितनी बड़ी जगह चाहिए, इसका मतलब है कोई बड़ी जगह होगी ना। और फिरौन की तो इन चीजों से आप कोई बईद भी नहीं है कि कोई उसने उन्हें बड़ा स्टेडियम ही बनाया हो, क्योंकि आप जैसे ये अहराम मिस्र देखते हैं तो इनके लिए तो कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीजें बनाना कोई मुश्किल नहीं थी चीज, जो इतनी ग्रैंड चीजें आज तक जो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से है ऐसी चीजें बना सकते हैं, तो फिर उनके लिए क्या मुश्किल कि इतनी बड़ी जगह बना लेते कि जहां पे ये सारे मुकाबला लोगों ने देखने के लिए आना था। ऐसी होंगी मे बी उनके पास जगह। तो उसने ये, अब सारी बात हो गई, अब वो सबके सामने निकल आए हैं, स्टेडियम में आ गए हैं, सारी दुनिया देख रही है इस वक्त। अब मूसा अलैहि सलाम भी खड़े हुए हैं, एक तरफ मूसा और हारून अलैहि सलाम है, दूसरी तरफ जादूगरों की एक फौज है जो स्टेडियम में कैसे दाखिल हुई है, सफे बना के, यानी सफ से कोई एंटर हो कहीं, तो आप समझते जैसे फौज वगैरह होती है तो उन्होंने लाइनों के अंदर आते हैं वो बड़े डिसिप्लिन के साथ, तो एक वैसे रोबतारी हो जाता है ना, तो वो ये सफे बना के दाखिल हुए, अब आमने सामने है। अच्छा अब आप ये सोचते होंगे कि उनको क्या पता कि हमने ये मतलब क्या मुकाबला करना है, क्या चीज हमें चाहिए, तो उनको पहले ही ब्रीफ किया गया होगा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम तो ये मौजा दिखाएंगे कि वो लाठी डालते हैं तो वो सांप बन जाती है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कालू या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकुना अव्वल मन अल्का, क्या तुम डालोगे या हम डालें, पहले कौन डालेगा। यही होता है ना पहले, अब देखें कोई कोई भी दो टीमें मुकाबला करने लगे तो टॉस वगैरह करते हैं ना कि पहले कौन खेलेगा, पहले कौन अपना दिखाएगा करता, जब भी दो में मुकाबला होगा तो जाहिर है कोई एक पहला होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखे काला बल अलकू, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम डालो। इसकी क्या वजह थी ये कहने की, इसलिए कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम अपना पहले दिखा देते मौजा, हो सकता है कि ये जादूगर कोई बहाना करके पलट जाते, या ये आते ही ना मुकाबले पर, या कोई और बात कह देते, कि वो नहीं चाहते थे, वो चाह रहे थे कि पहले ये अपना पूरा जोर लगा दें फिर फाइनल मूसा अलैहिस्सलाम उसके ऊपर वो करे। यानी मूसा अलैहि सलाम ने इनको पहले चांस दिया। अब देखें पूरी कौम तमाशा देखने को आई हुई है, जो कि दूसरों के दिलों के अंदर इनके लिए यानी वो रिस्पेक्ट पैदा करता है कि इन्होंने दूसरों को पहले मौका दिया है, दूसरों को पहले चांस दिया। और ये कैसे थे, ये किस तरह आए थे? फाइजा हिबालुहुम व आईसीयुहुम युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसअ। ये बड़ी लाठियां और रस्सियां साथ लेकर आए हुए थे, इनके हाथों में उन्होंने लाठियां पकड़ी थी। उनको बताया होगा कि भाई ये लाठी लाके सांप बनाएंगे, तो तुमने भी लाठियों के सांप बनाने हैं। तो उन्होंने उसी वक्त सब अब देख रहे हैं मुकाबला शौक से, फिरौन भी बैठा हुआ वहीं पे, और इतनी बड़ी तादाद में ये लोग हैं। इन्होंने जब अपनी लाठियां और अपनी रस्सियां जमीन पे डाली तो सब की जैसे नजरबंदी हो गई, ऐसे लग रहा था कि एक सैलाब आ गया है सांपों का जो दौड़ रहे थे। वो ऐसा लग रहा था कि ये दौड़ रही है रस्सियां और लाठियां। अच्छा ये एक चीज होती है कि जो यानी वो वाकई में वैसी नहीं बन गई थी, मौजा तो मूसा अलैहि सलाम का था ना कि लाठी जो थी वो वाकई में सांप बन गई। ये तो थी क्या युखय्यलु इलैहि, इससे पता चलता है ख्याल जाता था उसकी तरफ, यानी जैसे एक शोभदेबाजी सी होती है ना कि लगा ऐसे कि जैसे वो वाकई सांप बन गई। ये एक नजरबंदी का तरीका है। अब आज के वक्त में कई लोग पूछते हैं, अच्छा जी फलां मैजिशियन है, वो इतना वो है, वो लोग किसी को काट देता बीच में से, फिर पता नहीं क्या करता, तो आजकल लोग बड़े उसके दीवाने में। ये सब नजरबंदी की चीजें हैं, लोगों की आंखों को इस तरह जादू सा कर दिया जाता है उनपे कि वो ऐसे उनको लगने लगता है। सूरह आराफ में भी अल्लाह तआला ने फरमाया ना, लोगों की आंखों पर जादू कर दिया गया, और वो बहुत बड़ा जादू लेकर आए थे। वाकई वो इतने माहिर थे कि लोगों को, ऐसे छोटे मोटे जादूगर नहीं थे, वाकई लोगों को लगने लगा कि ये तो दौड़ रही है। फिरौन बहुत खुश के जो है ना, ये तो क्या बात हो गई। फअवजसा फी नफ्सिही खीफतम मूसा, अब मूसा अलैहि सलाम के दिल में भी थोड़ा कुछ खौफ सा पैदा हुआ। सोचे एक बशरियत का भी तो तकाजा है ना, बेशक नबी है लेकिन बशर भी तो है, इंसान है ना, तो नेचुरली एक एक सांप को देख के तो इंसान के जिस्म में सनसनी पैदा हो जाए, और कहां पूरा स्टेडियम सांपों से भरा हुआ और वो जैसे सांप हिल रहे हैं। तो उसी वक्त, अब ये नबुवत के उसके खिलाफ नहीं है ये चीज, ये बात याद रखें, अजमत नबुवत के खिलाफ नहीं है, ये बशरियत का तकाजा है, इंसान है ना। अच्छा अब मूसा अलैहि सलाम के लिए ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि वो इसलिए भी डरे कि अब उनको ये डर हुआ कि अब लोगों को समझ कैसे आएगी, जब जाहिर है वो भी लाठियों को सांप बना के दिखा रहे हैं, रस्सियों को सांप बना के दिखा रहे हैं, मैं भी वही चीज दिखाऊंगा, लोगों को कैसे पता चलेगा मौजा क्या है तो जादू क्या है। इसलिए वो परेशान हो गए कि अब ये फैसला होगा कैसे, अब क्या होगा। तो दिल में एक परेशानी आती है ना, वो एक नेचुरल परेशानी थी उनके दिल में, अब लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, मेरी लकड़ी एक सांप बन जाएगी, इन्होंने हजारों रस्सियां और लाठियां सभी सांप बना के दिखा दी हैं। तो उसी वक्त अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि कुल ना ला तखफ इन्नक अंतल आला, आप डरे नहीं है मूसा, आप ही गालिब आएंगे आज। अब आप क्या करें, वा अल्की मा फी यमीनी का तलकफ मा सनाउ, और डाल दो जो तुम्हारे दाएं हाथ में निकल जाएगा, जो उन्होंने बनाया, जो इन्होंने बनाया है, वो तो सब का सब ये चट कर जाएगा। और वो ही हुआ कि जब मूसा अलैहि सलाम ने सोचे इतने सारे सांप हैं, कैसा लग रहा होगा सर, और मूसा अलैहि सलाम दिल में थोड़ा सा डरे, लेकिन अल्लाह ताला ने समझा दिया कि आप बस डरे नहीं, आप ये जो आपके हाथ में इसको डाल दें, इनमा सनाओ कैद साहिर, बेशक जो उन्होंने बना लिया ये तो चाल है एक जादूगर की, ये तो सिर्फ नजरबंदी की भी, ये तो हकीकत थोड़ी है। और वला यफलहु साहिर हैसु अता, साहिर जो है ना कभी कामयाब नहीं हो सकता चाहे जहां से भी आए। अब मूसा अलैहि सलाम ने जब डाला असा को, तो वो इतना बड़ा सांप बन गया कि कहा जाता है कि ऐसा सांप था कि जिसके दांत भी थे और बहुत ही खौफनाक सांप था, उसको जू ही डाला गया तो वो सारे मैदान में जो सांप इतने सारे जमा थे, आपस में गबडमड हो रहे थे, ऊपर तले होने लगे हुए थे, उनको सबको निगल लिया। सब जादूगरों के करतब हड़प कर लिया। हक वाजे हो गया, मुझसे और जादू में फर्क पता चल गया। तो ये चूंकि जादू था ना, इसलिए ये इसके अंदर कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। जादूगर के बारे में इतनी सख्त हिदायत हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगर को जहां पकड़ो मार डालो। इतना सख्त बदतरीन गुनाह है, ये कबीरा गुनाहों में से है। और यही बात, यही आयत हर एक इंसान जो खौफजदा रहता है ना कि मेरे ऊपर जादू कर दिया, आज मुझे छींक भी आ गई तो मुझे जादू हो गया, आज हमारे घर में फलान चीज हो गई, बस जादू कर दिया किसी ने, इन वहमात से एक तो निकले। एक तो आधे हमारे आधे खुद ही वहम होते हैं, ठीक है, अपने देखें कि मैं कोई गलती तो नहीं करी, मेरे से तो नहीं कोई गुनाह हो गया जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और दूसरी बात, इस चीज को याद रखें, ला युफ्लिहु साहिरु हैथु अता, साहिर कभी कामयाब नहीं हो सकता चाहे जहां से भी आए। अगर आप चाहें, ये कोई मसनून या कुछ चीज नहीं है, ये मैं वाजे कर दूं, मैं अपने तौर पे आपको कह रही हूं, अपनी सिर्फ थेरेपी के लिए, अगर आप चाहें तो बार बार इस चीज को दोहराएं, बार बार समझ के, अब तो आपको समझ आ रही होगी ना, ला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, साहिर जहां से भी आ जाएगा वो कामयाब नहीं हो सकता, ताकि आपके दिल को यकीन आ जाए। क्योंकि बस दफा हमारी अपने यानी अंदर की कमजोरी की वजह से ये चीजें असर करती हैं, या हम अंदर से स्ट्रांग होंगे ना, ये चीजें असर नहीं करेंगी। तो ये याद रखें, ये नहीं कामयाब हो सकते, ये कुफर है, जादू करना कुफर है। और इतनी ज्यादा इसके लिए सख्त सजा है कि दुनिया में तो जहां पे भी कहीं मिले इसको मार दो। और हमारे यहां तो यानी खुलेआम ही ये कहा जाता है कि जादू और ये और फलां, और बाज लोग कहते हैं जादू के तोड़ के लिए हम जादू करा रहे हैं, तो आपका जादू ठीक हो गया फिर? नहीं, हमने तोड़ जो करना है, तो आपको एक तो पहले पक्का यकीन ही नहीं है कि आपके किसने जादू किया हुआ, सबसे पहले तो ये बात है, किसी के बताने से तो नहीं पता चल जाता ना फलां ने जादू किया। दूसरी ये कि जादू के तोड़ के लिए जादू नहीं कर सकते, जादू हराम है, और वो चाहे वो जो करने वाला है वो भी हराम करा रहा है, करवाने वाला भी हराम कर रहा है, और आप खुद नहीं कर रहे, आप करवा रहे हैं ना किसी के जरिए से, जादूगर से किसी से करवा रहे हैं, वो भी हराम है, और जो उसका तोड़ करता है वो भी हराम है, तोड़ में भी नहीं जादू कर सकते, हमें शरीयत ने बताया हुआ है ना इसका तोड़, तो हम वो ही करें। तो उसके बाद फिर हम कहते हैं नहीं, हम पे वो तो हमारे असर ही नहीं होता। असर क्या होगा, वही वाली बात है जैसे मैंने आज आपको जिक्र की बात बताई, जब शऊरी तौर पर पढ़ते ही नहीं तो असर क्या होगा आपको? शऊरी तौर पे पढ़ें, जैसे शऊरी जिक्र होता है, इसी तरह शऊरी तौर पे ये दुआएं पढ़ें, इंशाल्लाह असर होगा। अल्लाह की बात झूठी नहीं हो सकती है, हम झूठे हो सकते हैं, हमारी जुबानें झूठी हो सकती हैं कि हम पे असर नहीं होना, अल्लाह तआला ने जब कह दिया इसका असर है तो फिर है, आपकी बात मानी जाए अल्लाह की। फअल्किय सहरतु सुज्जदन, अच्छा उसी वक्त जब ये हुआ तो जादूगर ये पहचान गए कि ये काम इंसानी ताकत से नहीं हो सकता, ये जादू के तो फन के वो खुद माहिर थे, उनको तो खुद इतने ज्यादा, वो बड़े बड़े, उनसे बड़े कोई जादूगर थे नहीं उस इलाके में, सब बड़े बड़े जादूगरों को जमा कर लिया था फिरौन ने। अब जो जिसका जो काम होता है ना वही उसको समझ सकता है, वो जादूगर थे ना, उनको समझ थी कि ये जो है ना जादू नहीं है, क्योंकि जादू तो वो जानते थे क्या होता है, वो उनको पता चला ये जादू नहीं है, ये तो वाकई ही हक है, ये तो वाकई मौजजा है। और कुछ दरार तो पहले ही उनके अंदर पड़ चुकी थी ना, जिस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने ही उनको बता दिया हुआ था कि ये जादू वादू नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से मौजजा है, तुम क्यों इसके ऊपर इस तरह की बात कर रहे हैं? तो इसीलिए वो फौरन सजदे में गिर गए, कालू आमन्ना बि रब्बी हारून व मूसा, ये होता है ईमान लाना कि जरा भी हिलो हुज्जत नहीं, जरा भी सोचना नहीं कि फिर क्या होगा, फिर हमारा अंजाम क्या होगा, फिर हम देखते हैं इतने लोग जमा हुए इनमें तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, अगर वो देखेंगे कि अच्छा यही हार गए, हमारा कितना मजाक उड़ाया जाएगा, लोग क्या कहेंगे, फिर लोगों में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, हमारा तो कारोबार ही खत्म हो जाएगा, यही खदशात होते ना हमारे, कितनी सारी बातें होती हैं जो हम सोचते हैं। एक हक को मानने से पहले कि अगर मैंने मान लिया इस बात को तो फिर ये होगा वो होगा वो होगा, एक शैतान भी जहन में ना हजारों चीजें लेकर आता, जो नहीं भी होना होता वो भी ला ला के बड़ी बड़ी कर करके दिखाता है कि देखो ये हो जाएगा अगर तुमने मान लिया तो। तो याद रखिए, जब हक सामने आ जाए ना तो जरा भी उसके अंदर हीलो हुज्जत ना करें, आगे की बातें अल्लाह पे छोड़ दें, फौरन मान जाए, जैसे कि इन जादूगरों ने किया, सुबह को काफिर थे और शाम होने से पहले ही ईमान ला चुके थे, मोमिन हो चुके थे, कुफर पे सुबह की और रात तक शहीद हो चुके थे। सुबह रब का इनकार करने वाले थे, रात तक उसके लिए जान देने वाले बन गए, और ईमान कैसा उनका पक्का था, फौरन सजदे में गिर पड़े, फौरन अपना सर झुका दिया रब के आगे। अब फिरौन ने जब देखा तो फिर उसकी तो हवाइयां उड़ गई, उसने कहा आमन तुम लहू कबला अन आदना लकुम, तुम इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई इजाजत देता तुम उससे पहले ही मान ले आए। क्योंकि फिरौन ये समझता था ना कि इंसानों के दिल मेरी मुट्ठी में, मेरी मर्जी से सोचे, मेरी मर्जी से चले, मेरी मर्जी से बोले, गुलाम है उनके साथ जैसा मैं चाहूं सलूक करूं, ईमान भी लाए तो मेरी मर्जी से लाए, मेरी इजाजत ना हो तो किसकी मिजाल ईमान लाने की। इन्नहू लकबीरुकुम, ये तुम्हारा बड़ा था, ये तो पहले ही तुम्हारा बड़ा था, अल्लज़ी अल्लामकुम उस्सेहर, असल में तो इसी ने तुम्हें जादू सिखाया था। असल बात ये है कि तुम, ये तो नूरा कुश्ती थी, तुम तो पहले ही साजबाज करके आए हुए थे। फला उकत्ति अन्ना ऐदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफिन वला उसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नखल, कहने लगा मैं तुम्हारे, तुम सब के हाथ पैर उल्टी सिमत से काट दूंगा। क्या मतलब है? यानी राइट हैंड तो लेफ्ट टांग, लेफ्ट हैंड तो राइट टांग, इस तरह से किसी का लेफ्ट हैंड काटूंगा तो साथ राइट टांग काट दूंगा, और मैं तुम्हारे, तुम्हें सूली भी चढ़ा दूंगा खजूर के तनों के साथ। और पहले उसमें क्या कर दिया जाता था, हाथ और पैर कीलों से ठोंक दिए जाते थे और इसी तरह दरख्तों के ऊपर सूली चढ़ा दिया जाता था, तो उल्टी सीधी तरह से तुम्हारे हाथ पैर काट के तुमको खजूर के तनों पे सूली दूंगा और इस तरह से तुम्हारी जान निकालूंगा। वला तालमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबम व अबका, फिर तुम्हें पता चलेगा कौन है ज्यादा सख्त अजाब देने में और कौन ज्यादा बाकी रहने वाला अजाब दे सकता है। यानी कि फिर तुम्हें पता चलेगा जब मैं तुम्हें ऐसी इबरत की निशानी बनाऊंगा ना। और ये इसी ने, फिरौन ने सबसे पहले ये सूली चढ़ाने की जो सजा है ना, जो बात तक रही, सबसे पहले इसने शुरू की थी, इससे पहले नहीं हुआ करता था। देखें उसने जहां तक वो कर सकता था ना, जितनी सख्त से सख्त, ज्यादा सबसे ज्यादा कोई क्या कर सकता, किसी की जान ही ले सकता ना, और तो कुछ नहीं कर सकता। तो उसने जो सख्त से सख्त वो काम कर सकता था, उसने कहा मैं इतना शदीद, जान भी निकालूंगा लेकिन इतनी शदीद तरीके से तुम्हें सख्ती दूंगा ना, क्योंकि किसी को गोली मार देना वो एक अलग बात है, लेकिन किसी को सूली चढ़ाना वो एक तकलीफ दे चीज है। फिर सूली पे चढ़ा दिया जाता था, फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता था कि जो है ना वहां पे वो भूखा प्यासा रह के और मर जाए तड़प तड़प के। قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات, तो उन्होंने कहा हम हरगिज नहीं तरजीह देंगे इसके ऊपर जो आ गया हमारे पास, हमारे पास तो ये खुली निशानी आ गई है, हमने अपनी आंखों से अब ये मौजा देख लिया है, अब हम इस चीज के ऊपर किसी और चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे। ये कैसे लोग थे, कितना मुतासिर कुन इनका ईमान है। मतलब मैं तो हमेशा जब भी ये पढ़ती हूँ तो मैं इतनी इंप्रेस होती हूँ, इनका ईमान कैसा था। इन्होंने तो ना सोचा कि देखो इतनी सख्त सजा, अब क्या करें, जान बचाने के लिए तो कुफर का कलमा भी कहना जायज है, तो हम कह देते हैं कि ठीक है बाद में घर जाके ईमान ले आएंगे। क्या चीज उनको उतना इतना ना डर बना गई कि उनको इतनी बड़ी सजा का सुन के भी, और उसने तो सजा का इसीलिए ऐलान किया ना, ऐसे वरना ले जाके उनको कह दिया जा सकता था इनको गिरफ्तार करके ले जाओ और उसके बाद में कह दिया जाता इनको सूली। उसने ये इसलिए कहा कि एकदम ये डर जाए और जब डर जाएंगे तो फौरन फिर यानी इनकार कर देंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता था ना कि मैं जिस्मानी सजा तो दे सकता हूं लेकिन दिल तो मेरे हाथ में नहीं है, दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, वो जिधर चाहे फेर दे, और दिल किसी फिरौन के हाथ में नहीं है। और जब दिल में यकीन उतर जाता है, जब दिल में ईमान आ जाता है ना, फिर इंसान पीछे नहीं हट सकता। तो उसने तो वो ऊंचे हथकंडे अपनाए टॉर्चर का और इसकी धमकी दी, मैं टॉर्चर करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, टॉर्चर कर करके मारूंगा तुम लोगों को। तो टॉर्चर का सुन के ही इंसान के डर लग जाता है ना, वो तो बाद की बात है जब वो होगा। इनमें इतनी कुव्वत कैसे आ गई, पहले से प्लान था? नहीं, पहले तो वो आए थे और उन्होंने आके क्या कहा था, इस बादशाह को उन्होंने आके कहा था कि तुम हमें क्या इनाम दोगे, तुम हमें क्या इनाम दोगे जब हम ये सब जादू दिखाएंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो बताओ ए फिरौन कि तुम हमें क्या दोगे? तो उसने कहा था कि मैं तुम्हें अपना मुकर्रब बना लूंगा, मैं तुम्हें अपने से करीब कर लूंगा, इनाम और इकराम तो होगा, मेरे दरबार में स्पेशल प्लेस होगी तुम्हारे लिए, मैं बहुत कुछ दूंगा तुम्हें। तो पहले से तो नहीं था, एकदम कैसे दिल बदल गया। मगर तो सारी जिंदगियां भी सुन सुन के यही बातें सुनते हैं ना हम, आयात भी तो निशानी है ना, अल्लाह की निशानी है, दिल नहीं बदलते। ऐसा चट्टान जैसा मजबूत ईमान हो जाए, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाए, हमारा ईमान ना हिले। छोटी छोटी बातों पे तो हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, छोड़ देते हैं अल्लाह के रास्ते को। उन्होंने कहा अब तो कोई चीज हमारी प्रायोरिटी नहीं बन सकती, जो हम देख चुके हैं बस देख चुके हैं, अब हम उसके ऊपर किसी चीज को तरजीह नहीं देंगे। वल्लज़ी फ़तरना फ़क़दिमान तक़ा, और वो जात है जिसने पैदा किया हमको, तो तू फैसला कर दे जो तूने फैसला करना के। है फिरौन, तू हमारा फैसला जो करना चाहता है ना, उस जात ने हमें पैदा किया, अब हमें किसी की परवाह नहीं है, अब जो तू हमारे लिए फैसला करना चाहे वो कर दे, हमें नहीं परवाह। अब जब मुसलमान जो होता है ना, मौत जैसी चीज से भी न डर हो जाता ना, तो फिर दुश्मन डरने लगते हैं कि इसको तो मौत का भी डर नहीं है, अब मैं सब करूं तो करूं क्या, क्योंकि हद से ज्यादा हद कोई क्या कर सकता है, को टॉर्चर कर करके मौत दे देगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है, और तो नहीं कुछ कर सकता ना, दो मौतें नहीं दे सकता, तीन नहीं दे सकता। तो जिसको मौत का ही डर ना रहे, तो फिर उसको उससे दुश्मन डरने लगता है। तो उन्होंने फिरौन को के इख्तियार को भी चैलेंज कर दिया, कर दे, कर ले जो तूने फैसला करना, तुम क्या कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इन्नमा तकदी हादिल हयात दुनिया, तुम ज्यादा से ज्यादा इस दुनिया की जिंदगी के फैसले कर सकते हो ना, जो तो करना चाहते कर लो फिर, इस दुनिया से आगे तो तुम कुछ नहीं कर सकते। और देखो तुम्हारी हुकूमत इसी दुनिया तक है, तुम्हारा बस इसी दुनिया तक है, तुम्हारी जो सजा है वो भी यहां तक है, और ये दुनिया की जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, तो यहाँ की सजाएं तो बड़ी आसान है, तो तुम जो यहाँ पे सजा देना चाहे दे लो, तुम्हारा बस ही कहाँ तक चलता है, यहीं तक तो चलता है, पर ये तो छोटी सी ही है, ये तो गुजर ही जाएगी, हमने तो किस चीज की अब परवाह है, इन्ना आमन्ना भी रब्बी ना, हम तो ईमान ले आए बस अब अपने रब पे, अब वो क्या कर दे, अब वो बख्श दे हमारी खताओं को। जब ईमान आ जाता है ना, सबसे पहले यकीन जब दिल में आ जाता है ना, सबसे पहले अपनी खताएं नजर आने लगती है, बहुत बड़ी बड़ी होके नजर आने लगती है, इसलिए क्योंकि इंसान को फिर ये डर लगता है कि अल्लाह, अब अल्लाह पर ईमान जब लाए तो फिर आखरत पर ईमान लेकर आए, उसकी पूछ गिछ पर, उस दिन की अल्लाह के सामने खड़े होने की पेशी पर ईमान ले आए, फिर तो अपनी खताएं इतनी बड़ी लगती है, फिर सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की हो जाती है। वमा अकरहतना अलैहि मिनस्सिहर, और तूने ही मजबूर किया हमको इस जादू की पर। एक तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जब उन्होंने कह दिया था कि अब हम नहीं जाते, उनके अंदर तनाज़ा खड़ा हो गया था, तो कुछ ने कहा था ना कि हम नहीं जाते, नहीं मुकाबला करते, छोड़ो मत मुकाबला करो, तो इसने मजबूर किया कि नहीं नहीं अब तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। दूसरा ये भी मतलब हो सकता है कि फिरौन इनके छोटे बच्चों को लेके तो इनको जादू बाकायदा सिखलाने के लिए जोर देता था कि इनको सीखना है जादू, लोगों के बच्चों को ले लेके जादू के लिए सीखने के लिए मजबूर करता था। तो उन्होंने कहा तूने ही हमें जादू के ऊपर मजबूर किया, वल्लाहु खैरु व अबका, और अब तो हमें इस चीज की भी परवाह नहीं है कि तू हमें क्या इनाम और इकराम देगा, क्योंकि जो अल्लाह के पास है वो बेहतर भी है और बाकी रहने वाला भी है। कैसे पैमाने बदल गए, यानी मिनटों में कैसे पूरी सोच ही बदल गई, पूरी जिंदगी बदल गई, जिंदगी का पर्सपेक्टिव बदल गया, तरजीहात बदल गई, प्रायोरिटीज कुछ से कुछ बन गई। पहले क्या चीज बड़ी थी, इनाम था, इकराम था, और वो जो उसने वजारतें या जो उसने दरबार में जगह देनी थी उसका लालच था, उसको मांग मांग के ले रहे थे, और अब देखो कह रहे हैं जो सजा भी दोगे तो परवाह नहीं है। अब इनाम क्या, इनाम तो छोड़ो, सजा से बचने के लिए भी उन्होंने ये नहीं किया कि यहाँ ये करते कि भाई इनाम ले लेते उसके बाद की बात थी, सजा से बचने के लिए भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि चलो इस पे ही कॉम्प्रोमाइज कर लें, और क्या कह रहे हैं जो अल्लाह के पास है वो तो बेहतर भी है, बाकी रहने वाला भी है। ये होता है ईमान, जब आ जाता है तो जिंदगी बदल जाती है। ईमान मामूली चीज नहीं है, इसीलिए तो इसकी बेसिस पे जन्नत मिल जाएगी। ये खुद इतना भारी है, ये इंसान को क्या से क्या बना देता है, बिल्कुल नया इंसान। अब आगे हो सकता है कि ये जादूगरों की बात है, कंटिन्यूएशन है, और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने सबके लिए ये बयान फरमाया, इन्नहु मन यति रब्बहु मुजरिमन फ इन्न लहु जहन्नम, बेशक जो आएगा अपने रब के पास मुजरिम होके, मुजरिम कैसे होता है, यानी काफिर बन के या नाफरमान बन के, जब अल्लाह की निशानी उसके पास आ गई और उसने फिर भी उनसे कुछ हासिल नहीं किया, कोई नसीहत नहीं पकड़ी, कोई कबूल नहीं किया, कसूरवार होके। मुजरिम कौन होता है? जो कसूरवार होता है, जो कसूरवार बन के आ गया, उसके लिए जहन्नम है, ला यमूतु फीहा वला यहया, जिसकी सबसे ज्यादा बुरी चीज क्या है, जहन्नम की सबसे ज्यादा, कि वहां पे मौत नहीं है, मुश्किल ही है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने इसीलिए तो इतनी आराम से मान लिया ना, ठीक है तुम हमारा जो भी फैसला कर सकते हो दुनिया की जिंदगी तक ही कर सकते हो, उसके बाद कहाँ टॉर्चर करोगे, जब इंसान मर गया तो खत्म, चाहे जितना मर्जी उसके ऊपर टॉर्चर किया जाए, उसको क्या पता। तो ये तो बल्कि आसान है, मुश्किल तो वहां है कि अगर हम उसके दरबार में कसूरवार होके चले गए तब हमारा बनेगा क्या, क्योंकि वहां पे तो कोई मौत ही नहीं है जिससे हमें निजात मिल जाए। मौत जो है ना, अगर टॉर्चर वाली जिंदगी हो, तकलीफ दे जिंदगी हो, जितनी भी तकलीफ दे, मौत उसे निजात का बाइस है। इसीलिए तो लोग मौत मांग लेते हैं, बहुत ज्यादा भी बीमारी हो जाती है तो कहते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है तो कहते हैं मौत ही आ जाए, अब तो हमें मौत ही मिल जाए। तो वहां जहन्नुम का मसला ये है कि वहां पे मौत नहीं है, तो खलासी कैसे होगी फिर। इसीलिए तो उस दिन कहा जाएगा ना, लोग जब मौत को पुकारेंगे, जैसे दुनिया में तंग आकर पुकार लेते हैं, लोग वहां पे मौत को पुकारेंगे कि अभी इस टॉर्चर से तो बेहतर है हमें मौत ही आ जाए। तो उनको कहा जाएगा, एक नहीं कई मौतों को पुकारो, आज मौत नहीं आएगी। क्यों? इसलिए मौत को मौत आ चुकी होगी, मौत तो होगी ही नहीं अब, मौत वोंट बी एग्जिस्टिंग, उसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं। उसको तो आपको पता है ना वो हदीस के, उसको जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक मींढे की शक्ल में लाके उसको जिबा कर दिया जाएगा, उसको तो मौत आ गई। वो दिन मौत का भी, मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत के भी मरने का दिन है, यानी हर चीज फानी है ना। अल्लाह तआला ने फरमा दी ना, कुल्लू मना लही फान, हर चीज फानी है, तो मौत को भी मौत आनी है। तो जब मौत है ही नहीं तो फिर कैसे आएगी, पुकारेंगे पुकारेंगे आ ही नहीं रही वो, मौत भी कोई चीज है ना। वला यहया, और ना जिंदा रहेगा। जिंदा कैसे नहीं रहेगा? इसलिए कि जैसे इंसान बड़ी किसी मुसीबत में और उसे तो कहता है ये भी कोई जिंदगी है, इससे तो मौत अच्छी, ऐसे ही होता है ना। तो वो कहता है ना, ये भी कोई जिंदगी है, ये तो जिंदगी है ही नहीं, तो यानी वो जो आग में पड़ा होगा उसकी भी कोई जिंदगी है भला, वो तो जिंदगी है ही नहीं, उसको तो जिंदगी आप कह ही नहीं सकते कि जिंदगी। हाँ जिंदा तो होगा मगर जिंदगी वाली कोई चीज नहीं होगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 56 है कि जब कभी उनकी जिस्म की खालें जल जाएंगी तो हम उनकी खालें बदल कर दूसरी कर देंगे ताकि वो अजाब चखते रहें। अजाब भी नहीं खत्म होगा, इसलिए कोई जिंदगी है ही नहीं। वो अजाब खत्म हो तो उनको कुछ लगे कि कोई जिंदगी है, तो मुसलसल एक टॉर्चर में है। तो जिसको ये पता चल जाए उसको तो दुनिया की कोई तकलीफ तकलीफ नहीं लगती, उसको तो दुनिया में किसी की बातें बड़ी नहीं लगती कि लोग मुझे क्या कहेंगे। ये कोई बात बड़ी उसी के लिए रहेगी जिसने इस दुनिया की जिंदगी को हर चीज समझ लिया, और उसने समझ लिया कि मैंने यही रहना, और उसको जहन्नुम का या आखरत की पेशी का कोई ख्याल ही नहीं है। वो ये कहेगा कि लोग बातें ना करें इसलिए मैं अल्लाह का हुक्म पीछे कर देती हूँ, लोगों की बातों के डर की वजह से। हालांकि क्या है ये, लोग क्या कहां तक फैसला कर सकते हैं, ये नमातक दी हादी हयात दुनिया, वो भी तो दुनिया की जिंदगी तक ही फैसला कर सकते हैं ना। जितना मर्जी आपको बातें सुना दे, वो उनकी बातें तो दुनिया की जिंदगी की हद तक ही है ना। जब आप दुनिया से चले गए या वो चले गए तो बातें भी खत्म, सब कुछ यही रह जाना है। असल उसकी फिक्र होनी चाहिए जहां पे ना मौत है और ना जिंदगी। और जो आएगा उसके पास ईमान लाकर, कद आमिल सालेहात, तहकीक उसने अमल किए अच्छे, फाउलाइका लहुम दरजात, तो उनके लिए है दर्जे, कैसे दर्जे, लाउला बुलंद दर्जात है उनके लिए, ऊपर के दर्जात है उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए। सही है इनकी रिवायत है। सही है इनका मतलब क्या होता है, जब सही है इन कोई कहे या लिखा हुआ आप देखें तो क्या मतलब, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों की, दोनों में ये रिवायत है कि बाज लोग इतनी बुलंदी पर होंगे कि जैसे हम जमीन पे बैठ के तारों को देखते हैं ना, इस तरह से वो उनको देख रहे होंगे, दूसरे लोगों को बुलंद होंगे। तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये अंबिया के दर्जात हैं, फरमाया नहीं, कसम है उनके तो होंगे ही, क्यों नहीं उनके तो मिलेंगे, मगर कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और जिन्होंने रसूलों को सच्चा कहा, उनके भी ये दर्जात है। ओके, ईमान मामूली चीज नहीं, जब ईमान आता है ना इंसान की सारी जिंदगी बदल जाती है। आज जो हमारे अंदर ये कमजोरियां हैं, कोताहियां हैं, ये जो कमियां हैं हमारे अंदर, या ये जो गुनाहों की तरफ रगबत करते हैं, ये जो अल्लाह की नाफरमानी के हम काम करते हैं, असल उसकी जड़ पता है क्या है, ईमान में कमजोरी है, ईमान मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, इस वजह से है। तो बात यह है कि फिर अमले साले की जरूरत है, ईमान की जरूरत है। इस आयत की तिलावत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और जो अल्लाह से कयामत के दिन ईमान और अमले साले के साथ जा मिला, यानी जिस दिन वो रब से मिलता है उस दिन वो ईमान और नेक अमाल को साथ लाया है, इससे ऊंचे बालों खानों वाली जन्नत मिलेगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जन्नत के 100 दर्जों में इतना ही फासला है जितना जमीन और आसमान में है, सबसे ऊपर जन्नतुल फिरदौस है, इसी से चारों नहरें जारी होती हैं, इसकी छत रहमान का अर्श है, अल्लाह से जब मांगो तो जन्नतुल फिरदौस की दुआ करो। तो ये जन्नत बुलंद जन्नत क्या है, जन्नत तो आदन हमेश की जन्नत, तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे इसमें। दो इसकी सिफात हैं, एक तो ये कोई निकालेगा नहीं, हमेशा रहना है वहां पे, मौत ही नहीं है वहां पे भी, और दूसरी क्या है कि नहरें बह रही हैं इसके घरों के महलों के आगे नहरें बह रही होंगी। वज़ालिका जज़ा उमन तज़क्का, मगर ये जज़ा किसकी है, फारिग बैठने वालों की जिनके पास टाइम नहीं है, ये किसका बदला है, जो कुछ भी ना करें, सुस्त लोग काहिल लोग उनकी है, जो कोई कुर्बानी ना देना चाहे, जो अपनी जिंदगी को बदलना ही नहीं चाहते, जो जैसे मस्त है वैसे ही रहना चाहते हैं, नहीं, मन तज़क्का, जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, जिसने किस चीज़ से पाकीज़गी, कि सिर्फ जाहिर की पाकीज़गी नहीं, बातिन की भी, कुफर से पाकीज़गी, गुनाहों से पाकीज़गी, खपास्तों से पाकीज़गी, उसके लिए है ये। यानी इसका मतलब है कितना कितना जरूरी है अपने आप को पाक करना, अपने नफ्स का तज़किया करना, अपने अंदर को भी पाक करना है और अपने बाहर को भी पाक करना है हमें, ये बे इंतहा जरूरी है। इन्हीं इसी की फिर जजा मिलेगी वहां पे, और इसकी जजा क्या होगी फिर, ये जन्नत आदन है इसकी जजा। और तज़किया का जो माना अरबिक में है ना, वो है किसी चीज को साफ सुथरा बनाया जाए और उसकी उसको नशा नुमा देकर उसको परवान चढ़ाया जाए, ये है तज़किया। तो अपने अंदर को भी पाक करना है, अंदर को कैसे पाक करेंगे, जो गलत रोजानात है, जो गलत मिलानात है, जो गलत आमाल है, उनसे हट के, सिर्फ हटना ही नहीं है पाक करने में, उसको नशा नुमा देके परवान भी चढ़ाना है। वो का मतलब क्या कि नेकी और खुदा तरसी के रास्ते पर लेकर आए। और जिस इंसान को ये शौक होगा ना कि वो तज़किया करे अपना, उसकी सबसे बड़ी सोच यही होगी कि मैं गुनाहों से मुझे नफरत हो जाए, क्या करूं कि गुनाहों से मेरी जिंदगी पाक हो जाए, और नेकियों की तरफ वो लपकने वाला होगा। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अब हम इंशाल्लाह तिलावत सुनते हैं।
اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بايه من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى
الحمد لله کہ یہاں پہ حیرت ہو رہی ہے نا کہ جادوگروں نے کچھ ہی دیر میں اتنا کچھ سمجھ لیا جو شاید ہم ساری زندگی بھی نہیں سمجھ پاتے وہ یقین آ گیا جو ہمیں ساری زندگی نہیں آتا اگر آپ لوگ اس کی مزید تفسیر سننا چاہتے ہو تو انشاءاللہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے 126 تک آپ ویب سائٹ سے دیکھ کے آپ لوگ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تو مزید اس کے اوپر آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے پھر کیا دعا کی تھی اور کیا ان کے ساتھ پھر ہوا یہ سب چیز وہاں پہ آپ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید دیکھ سکتے ہیں اس کو جہاں تک یاد کا تعلق ہے تو ایک اور آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پورا اور سچا بندہ وہ ہے جو پوری عمر مجھے یاد کرتا رہے وہ ہے اللہ کا سچا بندہ اور پورا کا پورا اللہ کا بندہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک